Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हमारे साथ जहाँ कहीं भी जाएंगे ये सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर मात्र बदलता है. और सूक्ष्म शरीर अकेला नहीं जा सकता स्थूल के आधार के बिना. रो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म रूप है, जिन्हें भूत सूक्ष्म कहा जाता है वो सूक्ष्म शरीर का आधार है, वो तत्व है. वो जब तक इस शरीर के साथ है तब तक शरीर स्थिर रहता है, और वह भूत सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर को तथा सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान करके बैठे हुए जीवात्मा को लेकर के इस शरीर से निकल जाता है, तो फिर ये शरीर स्थिर नहीं रहता. खड़ा है तो खड़े खड़े किसी के प्राण छूट जाए तो खड़े खड़े गिर जाता है, बैठे बैठे छूट जाए तो बैठे बैठे, लेटा है तो लेटे ही रहता है, फिर उठ नहीं सकता. तो वो जो भूत सूक्ष्म है जो एक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को ले जाने में, दूसरे शरीर में तथा वहां पर उस समय के लिए अवस्थित करने में कारण बन जाता है, उन भूत सूक्ष्म को लेना है यहां पर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन भूतों के वाचक शब्द से जो स्थूल शरीर का कारण है पंचभूत, वे भी उन भूत सूक्ष्म के रूप में इस शरीर के अंदर विद्यमान न हो तो शरीर अवस्थित नहीं रह सकता, शरीर का विधारण नहीं हो सकता. इसलिए वे हैं इस शरीर को धारण करके रखने वाले. और केवल भूत सूक्ष्म ही भूत सूक्ष्म हो और सूक्ष्म शरीर न हो, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और प्राण और मन, यही तो भूत स्थूल सूक्ष्म शरीर है. और ये न हो तब भी जीवन नहीं माना जाता. जीवन के लिए, शरीर की स्थिति के लिए, जैसे स्थूल शरीर का सार रूप भूत सूक्ष्म का इस शरीर में होना आवश्यक है, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी रहना जरूरी है. उस सूक्ष्म शरीर को बताने के लिए है वांग, मनः, चक्षु, श्रोत्रंच. इसमें वाक शब्द को बाकी अनुक्त चार कर्मेंद्रियों का उपलक्षण समझना. पांच कर्मेंद्रियां हैं वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ. उसमें से वांग शब्द से तो वाक शब्द से तो वाणी को लेना, वाग इंद्रियों को, और बाकी चार का इसे उपलक्षण समझना, वाक शब्द से ही उनको भी ग्रहण कर लेना. ऐसे ये पांच कर्म इंद्रिया और मन, मन शब्द से मन बुद्धि दोनों को, या अंतकरण चतुष्टय चित्त अहंकार, चारों को ले लेना. और मन ये उपलक्षण है पांचों प्राणों का भी, इसलिए पंच प्राण भी समझना. और चक्षु श्रोत्र ये दो ज्ञानेन्द्रिया हुई, और च शब्द से बाकी तीन ज्ञानेन्द्रिया, रसन इंद्रिय, त्वग इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इन पांचों को लेना. इस प्रकार ये जो सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्व हैं, ये 17 के 17 जब तक स्थूल शरीर के अंदर रहते हैं तभी तक स्थूल शरीर का विधारण होता है. और यदि ये न हो शरीर के अंदर तो शरीर गिर जाए, नष्ट हो जाए. इसलिए ये हो गए भूत सूक्ष्म 5 और ये 17, ऐसे 22 हैं. तो कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शरीर को धारण करके रखने वाले देवता के रूप में बताए गए 22 वो भूत सूक्ष्म शब्द से कहे जाने वाले स्थूल भूत सूक्ष्म जो हो स्थूल भूतों का सूक्ष्म रूप है स्थूल शरीर का बीज वो और 17 सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व वे शरीर के विधारक है। प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ तो द्वितीय प्रश्न था कि इनमें से कौन कौन है जो शरीर का विधारण करने में थोड़ा सा योगदान करते हैं और अपने इस कार्य का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करते हैं ऐसे कौन है तो उनको बताया जा रहा है कि ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम एव एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम। तो ते शब्द से यहां पर प्राण को छोड़ करके बाकी 17 को ले लेना भूत सूक्ष्म 5 और ये 12 सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व 5 कर्मेन्द्रिया 5 ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि ये 12 और 5 भूत सूक्ष्म ये यहां पर ते शब्द से ग्राह्य हैं। ये क्या करते हैं कहते इनका रहना शरीर में जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन ये नहीं कि इनके इनमें से हरेक ये समझ ले कि मात्र मेरे कार्य के कारण ही जीवन चल रहा है यदि मैं न रहूं तो शरीर समाप्त हो जाएगा मेरे योगदान से ही ये शरीर चल रहा है जीवन यात्रा चल रही है और अन्य तो खाली इस शरीर को जैसे मैं ढो रहा हूं ऐसे बाकी को भी ढो रहा हूं और मैं ही अकेला ये पूरा शरीर का निर्वहन कर रहा हूं ऐसा अभिमान ये 17 करते हैं 17 में से हरेक करते हैं इसलिए उनको ऐसे लेना कि ते प्रकाश अभिवदंती यानी इनका है थोड़ा थोड़ा योगदान लेकिन अपने थोड़े से योगदान के लिए वो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मैं ही कर रहा हूं और ऐसा केवल मन में ही रखते हैं ये बात नहीं कहते प्रकाश्य अभिवदन्ति लोगों को ये पता चले ऐसा दिखाते भी हैं प्रकाशित करते हैं और मुख से बोलते भी हैं अभिवदन्ति प्रकाश्य अभिवदन्ति क्या कहते हैं तो कहते वयम एव एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम इनमें से हरेक जन इन 17 में से ये मानता है कि ये बाण यानी शरीर इस शरीर को तो हम ही यानी मैं ही धारण करके रखा हूं मैं ढो रहा हूं यदि मेरा एक दिन भी ये काम बंद हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाए ऐसा इन 17 में से हरेक जन कहता रहता है और है थोड़ा सा योगदान दिखा रहे हैं ज्यादा पूरा का पूरा मैं ही कर रहा हूं करके ऐसा ये बाणम अवष्टभ्य यानी शरीर को स्थिर करके हम ही धारण करके रखते हैं। बाण शब्द से शरीर को कहा जाता है इसलिए कि वा धातु है गति अर्थ में और गंध अर्थ में तो वाति गंधम वहति इति वानम ऐसी वान शब्द की यदि उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलेगा जो दुर्गंधी को ढोए, उसे वान कहते हैं। तो ये जो शरीर है, यदि दो चार साल स्नान न करें, खूब गर्मी हो रही है, दो चार दिन भी पसीना खूब आता है रोज का रोज मान लो, और कपड़े भी न धोले बदले, कपड़े न बदले और पसीना न पूछे, उन्हीं कपड़ों में वो सूखता जाए, तो कोई पास में हमको बैठने देगा पसीने की गंध से? तो ये कहां से आती है दुर्गंधी? इसी शरीर से। तो इसलिए शरीर जो है वान है, यानी दुर्गंधी का वाहक है, वहन करने वाला है, दुर्गंधी को ही ढोता रहता है। दो चार दिन ब्रश न करें तो, नाक कान को आंख को साफ न कर ले तो ये सब जो है दुर्गंधी दुर्गंधी है, और इसको ढोता रहता है ये शरीर, दुर्गंधी की फैक्ट्री है शरीर ही, तो प्रदूषण फैलाता है। तो इसलिए इसे वान करते हैं, और इसलिए भी इसे वान करते हैं, गति अर्थ लेते हैं। तो ये शरीर ही क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और शरीर में आत्माभिमान करने वाले आत्मा जिसकी गति नहीं है उसमें भी गति दिखाता है। लेकिन शरीर ही घर से 7:30 बजे यहां अध्यात्म विद्या भवन में आता है, जैसे ही 8:30 बज जाते हैं तो यहां से ऑफिस जाता है, जहां जहां जाना है गंतव्य स्थान पर आना जाना हो रहा है शरीर का। तो जो गमनागमन करे उसे कहते हैं वान, और संस्कृत में व को कहीं कहीं ब भी लिखते हैं, हिंदी में भी कोई कोई व को ब बोल देते हैं, ऐसे यहां पर बाण लिखा है, बाण। हाँ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवात्मा को पहुंचा दें। आज मानव शरीर के रूप में है जीवात्मा, तो पुण्य कर्म करा करके देवता शरीर में पहुंचा दें, वो कौन पहुंचाता है? शरीर ही। शरीर से अच्छे कर्म किए, देवता शरीर में पहुंचा दिया इसी शरीर ने। यही शरीर पाप कर्म करता है तो नारकीय शरीर में पहुंचाता है जीवात्मा को। तो इस प्रकार ये वान है, और इस वान को यानी शरीर को ये 17 देवता थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं जीवित रखने में, धारण करके रखने में, लेकिन अपने उस थोड़े से योगदान के कारण अभिमान कर लेते हैं कि शरीर यदि जीवित है तो मेरे कारण, मेरे योगदान से जीवित है। ऐसा ये 5 प्राणों को छोड़ करके बाकी सब कहते रहते हैं। तो कतरे देवा प्रकाशयन्ते, ये जो कहा था, ये अपना कार्य लोगों को ज्ञात हो ऐसा व्यवहार करते हैं कितने देव, तो बताए 17 देव है 22 में से जो ऐसा करते हैं। और इन 17 देवताओं का जो अभिमान है और प्रचार प्रसार है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्राण तक पहुंच गया। जो योगदान तो बहुत ज्यादा कर रहा है, मुख्य भूमिका निर्वहन कर रहा है, लेकिन कुछ भी अपने शरीर विधारण रूप महात्म्य का लोगों को दिखावा नहीं करता, कार्य का न बताता है। लेकिन ये सब हम ही करते हैं ऐसा अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए जैसे ही बोलते रहते हैं, तो इनका बोलना इतना अधिक बढ़ गया कि धीरे 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 सबका प्राण के कान तक पहुंच गया। प्राण को भी ज्ञात हुआ और प्राण को लगा कि इनको तो अभिमान हो गया। ऐसे कहते हैं कि ब्रजवासियों ने गोवर्धन को उठाने के लिए थोड़ा सा भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं थक गया हूं, थोड़ा योगदान करो, उठा लो। तो अपनी अपनी लाठियां लगाई और उनको अभिमान सा हुआ कहते हैं, तो उनके अभिमान को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने जैसे ही थोड़ा हाथ हटा दिया गोवर्धन पर्वत से तो पर्वत बैठने लगा। तो फिर अरे कृष्ण ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे कहा कि नहीं आप ही धारण करते हो भाई, हमारा अभिमान नहीं, इसको पकड़ो जल्दी। ऐसे ही ये प्राण भी भगवान कृष्ण ने जैसे ब्रजवासियों के अभिमान को दूर करने के लिए थोड़ा ढीला कर दिया अपना हाथ, तो पर्वत नीचे आने लगा, वे दबने वाले थे, फिर उनके प्रार्थना से भगवान ने रोका। ऐसे ही ये प्राण ने भी देखा कि इन सबको तो बड़ा अभिमान हो गया है, इनके अभिमान को शांत करने के लिए प्राण इन सबको संबोधित करके कहता है, ये बताया जा रहा है तीसरे कंडिका में। तान वरिष्ठ प्राण वाच मा मोहम आपद्यथा अहम एव एतत् पंचधा आत्मानम् प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्धाना बभूउ। तो वरिष्ठ प्राण तान वाच, इसमें प्राण का एक विशेषण वरिष्ठ दे करके तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दिया। भार्गव का तीसरा प्रश्न है इनमें वरिष्ठ कौन है, कह एषाम वरिष्ठ। तो प्राण का वरिष्ठ ये विशेषण दे करके एक प्रकार से आचार्य पिपला जी कहते हैं इन शरीर को धारण करने वाले देवताओं में वरिष्ठ देवता यदि कोई है, प्रधान देवता यदि कोई है, तो वो प्राण है। लेकिन वो शरीर को धारण करना रूप कार्य तो निरंतर करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। बाकी सब तो आंख भी रूप देखते देखते थक जाती है तो विश्राम के लिए सो जाती है, देखना रूप कार्य से उपराम ले लेती है। श्रोत्र इंद्रिय भी सुनते सुनते थक जाती है तो सो जाती है। प्राण कभी सो जाए तो प्राण का व्यापार हमेशा चलता रहता है तीनों अवस्थाओं में, वो कभी थकता नहीं है। तो मुख्य कौन होगा शरीर के धारण में, मुख्य व्यापार तो प्राण का है ना, तो वो वरिष्ठ है। लेकिन वो कभी न अभिमान करता है न किसी को कहता है कि शरीर का धारण मैं करता हूं, मेरे कारण जीवन चल रहा है, ऐसा कभी नहीं कहता। लेकिन जब इनका अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, भूत सूक्ष्मों का और वागादि इंद्रियों का मन का, तो मुख्य प्राण ने इन सब को कहा, क्या कहा कि मा मोहम आपद्यथा, आप लोग अविवेक के कारण इस प्रकार का भ्रम मत पालो, भ्रम में न पड़ो, मोह मत करो। थोड़ा बहुत योगदान कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि मेरे योगदान के बिना तो ये शरीर एक क्षण भी नहीं रह पाएगा, इस प्रकार का ये आप लोगों का मोह ठीक नहीं है, ये मूढ़ता है, अविवेक है आपका। तो कहा यदि हमारी मूढ़ता है तो इसका कौन है जो इसको मुख्य रूप से धारण करके रख रहा है। तो कहते हैं अहम एव एतत् पंचधा आत्मानम प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। प्राण ने कहा इन सबको कि आप लोगों का तो अज्ञानवशात अभिमान मात्र करना है, भ्रम है, इस शरीर को आप ही धारण करके रखे हो करके। वस्तुतः मैं ही इस शरीर में मुख्य रूप से तो एक ही प्राण है, और पंच प्राण जो कहा जाता है, एक ही प्राण अलग अलग पांच कार्य करने के कारण पांच नामों से कहा जाता है। पांच कार्य करने के लिए प्राण अपने आप को नियुक्त करता है अलग अलग पांच स्थान पर, तो माना जाता है वो पंचवृत्ति हो गया है। एक अध्यात्म प्राण, और वो अलग अलग पांच कार्य करने के लिए पांच स्थानों पर नियुक्त हुआ, तो कहा जा रहा है पांच रूप में। इसलिए कहते हैं कि अहम आत्मानम पंचधा प्रविभज्य, मैं ही अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान रूप से अपने आप को विभक्त करता हूं। और विभक्त करके अलग अलग कार्य करता हूं, और ये अलग अलग कार्य किस लिए कर रहा हूं, शरीर बना रहे, जीवन बना रहे, शरीर की स्थिति सुव्यवस्थित चले, इसके लिए मैं अपने आप को प्राण अपान आदि पांच विभागों में विभक्त करके अवस्थित रहता हूं और शरीर को धारण करके रखता हूं। प्राण की इस बात को सुन करके ये भूत सूक्ष्मों को, मन को, वागादि को, चक्षुरादि को प्राण के इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इस वाक्य पर। तो श्रुति कहती है कि ते अश्रद्धाना बभू, प्राण ने तो सही कहा, लेकिन जब अभिमान ज्यादा होता है ना, और अपने आप को बड़ा समझता है, तो वो अभिमान सत्य बात पर भी विश्वास नहीं होने देता। तो प्राण ने तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इनको लगा कि जैसे हम आपस में विवाद कर रहे हैं अपने अपनी श्रेष्ठता के लिए, मैं ही धारण करके रख रहा हूं करके, ऐसे हमारे तरह ही ये प्राण भी कह रहा है, ये सोचता है कि हम सब में इसी की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए, इसलिए ये गलत बोल रहा है, ऐसा उनको अविश्वास हुआ प्राण की बात पर। और प्राण के मन में इनके इन चेहरों को देख करके समझ आ गई, व्यक्ति के चेहरे पे आने वाले भाव व्यक्ति के मन की पहचान कराते हैं, अंदर क्या सोच रहा है वो। तो प्राण के वाक्य को सुना आकाशादियों ने, और उनके चेहरे पे अविश्वास के भाव प्राण को दिखे, और उन भावों को प्राण ने पढ़ा मन में, ऐसा ऐसा इनके अविश्वास है मेरे वचन के प्रति। अब प्राण को लगा कि इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए प्राण प्रैक्टिकल करना प्रारंभ करता है, मुख्य प्राण, अपने वाक्य पर इनका विश्वास जमे इसके लिए। लेकिन प्राण सोचता है कि सीधा सीधा इनको एकदम संकट में डालना ठीक नहीं है, 24 घंटे का समय दे दें और ये अपने आप ही सोच करके अभिमान को छोड़ दें तो अच्छा है, और नहीं 24 घंटे में भी इनके अंदर विवेक जगेगा तो बाद में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, 24 घंटे बाद, 23 घंटे बाद, 7:30 बजे 29 तारीख 2015 को प्राण प्रैक्टिकल करेगा यहां तीसरे माले में, वो देखने के लिए आ जाना।